फड़फड़ कर रहा, पसीने आ रहे हैं, महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला है। मतलब क्या हुआ? सोचा जब पांडव लोग डर के मारे यदि युद्ध छोड़ करके चले जाएं तो इसी में भला है, हमारी जीत तो निश्चित है। जिसकी ओर में भीष्म पितामह जैसे भी सबको अस्त्र शस्त्र सिखलाने वाले द्रोणाचार्य हैं, कर्ण जैसे हैं, जयद्रथ है, शकुनी जी हैं और बहुत बड़े वीर हैं, उसके सामने ये पांचों पांडव क्या कर लेंगे? इसलिए जीत तो हमारी होगी, इसलिए डर के मारे भग जाए तो अच्छा है, इनकी सद्बुद्धि आ जाए छोड़ करके चले जाए। इसलिए धड़फड़ कर रहा है, निश्चय रात दिन चैन नहीं आती। दुर्योधन को क्या है प्रॉब्लम? वो किस लिए चिंतित है? किस प्रकार से मार करके इनका राज्य हम ले लें? सब समय उनको षड्यंत्र से मारने की चेष्टा में है, उसका प्रॉब्लम यह है। दिन रात उसके लिए चिंता है, खाना पीना भूल गया। पांडवों की भी चिंता है, पांडवों की क्या चिंता है? अर्जुन को कहा, अर्जुन ने कहा कृष्ण को जब बीच रथ मिले चलिए, सेनाओं के बीच में, बीच में ले गए, आप लोग दो मिनट जरा हमें समय दे तो अच्छा है, दो मिनट तक आप लोग बातचीत न करें, उधर सुनाई नहीं पड़ता है क्या? दो मिनट आप लोग बातचीत न करें तो अच्छा है, दो मिनट के लिए हमको समय दे, बातचीत करने के लिए बहुत समय मिलेगा। दोनों के बीच में रथ ले गए, सेनाओं के बीच में, अर्जुन ने धनुष को छोड़ दिया, शरीर से पसीने से तर बर हो गया, क्या करूं? एक तरफ में हमारे भाई, हमारे मामा, पुत्र और सब हमारे तरफ में, ऐसे यदि युद्ध हुआ तो सभी मारे जाएंगे, एक थोड़े से धन संपत्ति के लिए इतना बड़ा बड़ा है युद्ध, सब स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, धर्म नष्ट हो जाएगा, इस तरह से पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, मैं ऐसा युद्ध नहीं करता। उसने युद्ध करने से मना कर दिया। इनके ये क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहे हैं धर्म के लिए सोच रहे हैं, थोड़े से रुपयों के लिए, राज्य के लिए परस्पर लड़ना उचित नहीं, इसलिए भीख मांग करके भी खाना उचित है, किंतु ये युद्ध करना उचित नहीं। भीष्म पितामह जी क्या सोच रहे हैं? उनको भी प्रॉब्लम कुछ है। ये दोनों के पितामह हैं, दोनों वंशों के मूल हैं, वो सोच रहे हैं ये युद्ध होना जरूरी है, मैं यदि युद्ध नहीं करूंगा तो युद्ध नहीं होगा, इसलिए करों के पक्ष से युद्ध करना है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, इसलिए युद्ध करूंगा ही करूंगा, क्योंकि कृष्ण की ऐसी इच्छा है, वे भूभार हरण करना चाहते हैं। आजकल आत्मधर्म नष्ट हो गया है, लोग भगवान को नहीं मानते हैं, आत्मा को नहीं मानते हैं, आजकल जिसकी भैंस उसकी लाठी जिसकी भैंस, आजकल भी वही समस्याएं हैं, दुष्ट लोग ऐसा ही करते हैं। इसलिए भीष्म पितामह जी परम ज्ञानी थे, तत्व ज्ञानी थे, उन्होंने सोचा जे कृष्ण पृथ्वी का भार उतार करके आत्मधर्म को जगत में प्रचार करके सुख और सुखी और शांति बनाना चाहते हैं, इस कार्य में अब हमको सहयोग देना चाहिए। उन्होंने निश्चय कर लिया, और निश्चय करके कौरवों की तरफ से पांडवों से युद्ध करने के लिए, किंतु भीतर से क्या चाहते हैं? पांडवों की जीत, ये परम धर्मात्मा। कितने दयालु हैं भीष्म पितामह जी, जरा देखिए, जिस समय युद्ध हो रहा था उस समय में दुर्योधन ने कहा पितामह आप हमारे तरफ से युद्ध तो कर रहे हैं, किंतु आप मन देते हैं पांडवों की तरफ में और उनकी विजय चाहते हैं, संजय ऐसा क्यों सोचता है तू? तो आप यदि ऐसे हैं तो आप अपनी इच्छा मृत्यु के, आप बिना इच्छा के मर नहीं सकते, इस समय आपको कोई पराजित नहीं कर सकता, और इस भजन के प्रभाव से आप किसी को कोई बरदने में समर्थ हैं, इसलिए आप हमारी पत्नी को ये बर दे दीजिए कि तुम कभी विधवा मत होना। अजय अच्छी बात है, तुम्हारे हमारे को बात पर विश्वास नहीं आया, ठीक है ऐसा ही करना, कल रात में उसको ले आना हमारे पास में, मैं उसे बर दे दूंगा, तुम सुहागिन बनो। सुहागिन मैंने क्या, पति नहीं मरे, रात में खूब जोरों से बरसा होने लगी, मूसलाधार बरसा, बड़ी जोर से आंधी, सब लोग अपने अपने घरों में छिपे हुए, सियोरों में छिपे हुए हैं, कोई घर से बाहर। दुर्योधन ने अपनी पत्नी से कहा, आज तो बड़ी भयंकर रात, आज रहने दो, कल चलें। कोई बात नहीं, पत्नी ने कहा, जी ठीक है, आज रहने दीजिए, कल चलें। और उसी समय में कृष्ण ने कहा, द्रौपदी जो कृष्णा, तू हमारे साथ में आ जा। कृष्ण को चिंता है, अर्जुन की प्रॉब्लम तो है, किंतु उन्होंने सर्व समर्पण कर दिया है कृष्ण के चरणों में, अपने रथ की बागडोर, अपने बुद्धि की बागडोर, अपना सर्वस्व कृष्ण के चरणों में न्यौछावर कर दिया है। ये दोनों में अंतर है पांडव और कौरव। जिसने अपनी बुद्धि की बागडोर भगवान कृष्ण के चरणों में सौंप दी, उसी की विजय निश्चित है, वही सुखी और शांति रह सकता है। ये संसार भी महायुद्ध है, हम लोगों की बुद्धि में तरह तरह के विचार आते हैं, अपने विचारों को हम दमन नहीं कर पाते, कृष्ण को समर्पण नहीं कर पाते। छोटी सी बात कृष्ण को समर्पण करने से काम हो जाए, नहीं करते। द्रौपदी परम भक्त थी, उन्होंने कृष्ण को रस, कृष्ण ने उनको रस में चढ़ाया और भीष्म पितामह के शिविर के सामने ले गए, बड़ी मसलाधार वर्षा और उसमें खड़ा कर दिया। द्रौपदी निकल करके पितामह के पास में जाओ, घूंघट जरा नीचे रखना, जो समझ न सकें वो समझे जो दुर्योधन की पत्नी आ रही है, क्योंकि ऐसा वैसा वादा किया गया है। द्रौपदी अपना घूंघट निकाल लिया और निकल करके पहुंची भीष्म पितामह जी कृष्ण के ध्यान में मग्न थे, भगवत चिंतन में, रात में सोते भी नहीं थे, एकदम ध्यान में मग्न। इतने द्रौपदी वहां आई, मूसलाधार वर्षा, थोड़ी देर तक बैठी, घुटनों पर टेक करके और प्रणाम करती हुई, थोड़ी देर के बाद में उनका ध्यान खुला, आठ हुई, क्या है, क्या कहाँ जा रहा है, क्या बात हो
गई,
जरूरत नहीं, छोड़ तुम लोग चुपचाप रहो, ऐसे बैठे। थोड़ी देर बाद उनका ध्यान खुला, कुछ आठ मिली, अरे बेटी तू आ गई, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा, जाओ तुम चिर सुहागिनी बनो, तुम्हारा पति की कभी मृत्यु नहीं होगी और समर में तुम्हारी, तुम्हारे पति की विजय होगी। द्रौपदी ने घूंघट उठाया और पितामह को प्रणाम, अरे बेटी तू कहाँ से आ गई, तू कहाँ से आई, मैंने समझा कि ये लक्षणा है, भानुमती है, और तू कृष्णा तू आ गई, बतला तो तू, तू अकेले नहीं आई, तुम्हारे साथ में तुमको ले करके कौन आया। वो भी मुस्कुराने लगी। इतने में उसने कहा, कृष्ण साथ में आए, ओ मैं समझ गया, संसार में जिसकी कृष्ण रक्षा करते हैं, जिसके प्राणों की बागडोर कृष्ण के हाथ में है, जिसने सर्वस्व कृष्ण के चरणों में समर्पण कर रखा है, बड़ा तो कोई विपत्ति और प्रॉब्लम हो सकती है, कभी जाओ तुम्हारी विजय होगी, और तुम्हारे इसी तरह से समझो ये कृष्ण कितना ख्याल रखते हैं, कृष्ण को क्या गर्व करी है द्रौपदी को ले जाने के लिए, वो तो सबके प्रति बराबर हैं, दुर्योधन के प्रति जैसे ही बराबर हैं, वो समदर्शी हैं, हाँ समदर्शी हैं, भक्तों के प्रति समदर्शी अधिक हैं, भक्तों का पक्ष लेते हैं, सूर्य की रोशनी में जो आएगा उसको सूर्य रोशनी देंगे, और जब ये अंधकार में छिपा रहेगा तो कैसे देंगे, इसलिए जो भगवान का भजन करेंगे, अपने जीवन की सारी बागडोर उनके चरणों में सौंप देंगे, वो अवश्य ही सुखी होंगे, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं। इसलिए अर्जुन ने क्या किया, महाभारत युद्ध के पहले ही, जबकि दुर्योधन और ये भीम अर्जुन हस्तिनाथ वहाँ पर पहुँचे द्वारका में। कृष्ण उस समय सवेरे सो रहे थे, दोनों निमंत्रण युद्ध देने के लिए गए। हरि भोर का समय 4 बजे सो रहे हैं, कृष्ण कभी नहीं सोते किंतु सो रहे हैं। दुर्योधन ने देखा, मैं तो इनका समधी हूँ, इनका बराबरी का हूँ, उनकी पुत्री का विवाह सांब कृष्ण के पुत्र से हुआ था, इसलिए मैं थोड़े ही से नीचा वो सिरहाने की तरफ में बैठ गया। अर्जुन पहले आया था, नहीं ये दुर्योधन, इसके बाद में अर्जुन आए निमंत्रण देने कि आप हमारे तरफ से युद्ध कीजिए। तो वो आकर के और पैर ताने की तरफ में वहाँ पर बैठ गए दीनहीन होकर। इतने में कृष्ण सीधे उठे और उठकर, अर्जुन तुम कब आया, क्या चाहते हो, आज क्या बात हो गई। अर्जुन कहने कुछ जा रहा था, इतने में दुर्योधन, अरे मैं पहले आया। तो कृष्ण कहा कि आप इससे बैठे हैं ना विमुख। अच्छा सर कहिए आप क्या चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि महाभारत का युद्ध आप हमारे तरफ से होकर के कीजिए। सारा भारतवर्ष 2 भागों में विभक्त हो गया, आपको हमारे तरफ से युद्ध कर क्योंकि मैं पहले पहुँचा। कृष्ण ने कहा ठीक बात है, आपको चुनने का अधिकार है। एक तरफ में हमारी सारी सेनाएं रहेंगी अस्त्र शस्त्रों के साथ सेनापतियों के साथ, और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, युद्ध भी नहीं करूंगा और अस्त्र भी धारण नहीं करूंगा, आप हमको ले लीजिए अथवा उसने देखा तो जिससे कृष्ण को लेकर के क्या होगा, बेकार खिलाना पिलाना, और हमको सेनाओं की जरूरत है जिससे कि इनको परास्त कर सकें। उन्होंने कहा जैसे अच्छा तो ठीक है, जब आप लड़ेंगे ही नहीं, युद्ध नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो अपनी जितनी सेनाएं हैं सेनापति हैं अस्त्र शस्त्र हमको दे दीजिए। कहिए जब वो लेकर के जब चले गए, अर्जुन से पूछा तुम दुखी क्यों नहीं हुआ, जो तुमको मैंने कुछ नहीं दिया अब तुम हमको लेकर के क्या करेगा। कहिए यदि आप अपने को दे देते उसके तरफ से मैं तो तभी प्राण प्रत्याग करूँ, हमको अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है, सेनाओं की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, बस आपकी जरूरत है। आप चुपचाप हमारे मन रूपी रथ के ऊपर में बैठे रहिए, हमारा संचालन किए कि मुझे क्या करना चाहिए। इस तरह से कृष्ण को लेकर तो कृष्ण युद्ध में जब दोनों सेनाओं के बीच में पहुँचते हैं, अर्जुन ने कहा मेरी बुद्धि काम नहीं करती, पसीने गिर रहे हैं, शरीर कांप रहा है, उसको धारण करने में समर्थ नहीं, और मुझे जो कुछ करना है आप बतलाइए। किस रास्ते हम मैं आपका शिष्य हूँ, आप जैसे कहेंगे वैसा करूँ। शिष्य माने क्या, तन से मन से वचन से आत्मा से संपूर्ण रूप से गुरु के चरणों में समर्पण कर, जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, यदि ऐसा है तो शिष्य है, और यदि ऐसा नहीं है तो शिष्य नहीं है। गुरुजी आपको हमारा अपना जितना खजाना था सब आपको दे दिया, चाबी किंतु मेरे पास में रहेगी, ये तो खजाना देना हुआ नहीं। अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव, आप जो कुछ कहेंगे वही मैं करूंगा, मैं 2 पैसे के लिए लड़ना नहीं चाहता, राजी भिक्षा मांग करके भी जीवन निर्वाह करना चाहता था, इसलिए मुझे भिक्षा लड़ाई युद्ध नहीं करनी, ये राज्य उनको दे दिया जाए, मैं ऐसे ही सुखी हूँ। कृष्ण काफी सुखी बात करता है बुद्धिमान होकर के, कौन मारने वाला, कौन मरने वाला, क्या प्रॉब्लम, क्या किस लिए इतनी चिंता, आत्मा अजर अमर है, शरीर मैं नहीं हूं, यह सबसे पहले समझा जाए। पसंद से गिरणानी यथा विहाय नवान ग्रहणा तुम, ये शरीर क्या है, कपड़ा है, मट्टी है, बचपन में जन्म मिला और इसके बाद में थोड़े दिन के बाद में बड़े हुए, कुछ और बड़े हुए, पढ़े लिखे, इसके बाद में विवाह शादी हुई, 50 वर्ष के हुए, इसके बाद में धीरे धीरे क्षय होना लगा शरीर का, 80 वर्ष के बाद में कुछ कर नहीं सकते, बोली भी नहीं निकलती, लकड़ियों के सहारे चलते हैं, बोलते हैं इधर हो जाता है उधर, किसी का मुख टेढ़ा हो जाता है, किसी का पंगू हो जाता है, किसी को पैरालिसिस हो जाती है, किसी को कुछ हो जाता है, कोई पहले ही मर जाता है। इस तरह से कोई भी सुखी शांति नहीं है, ये कपड़ा है, अपने कर्मों से बना हुआ है। जिसके अच्छे कर्म है उसके अच्छी अच्छा इस जगत में कुछ है, और जो बुरे कर्म किए हैं उनकी यही बुरी दशा होती है। इसलिए आत्मा अजर अमर है, शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता, पानी से भिजाया नहीं जा सकता है, वो नित्य अजर अमर शाश्वत है। क्या कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ये मेरा अंश है, ये मत समझोगे गीता तुमसे पहली बार कह रहा हूँ, लाखों बार तुमसे कह चुका हूँ और लोगों से, पहले 8 करोड़ों वर्ष पहले सूर्य को कहा था, इसके बाद में ये विद्या भूल गई। अब लोग खाना पीना मौज करना इसी को धर्म कहते हैं। आजकल विदेशों में पहले ये मैंने देखा, खाओ पियो मौज करो, इट ड्रिंक एंड बी मेरी, वही बड़ा सुखी है। आज उसकी कुछ कुछ हवा भारतवर्ष में भी आ रही है, यदि माता पिता को भी कत्ल कर देने से कुछ मिल जाए तो उसको झट कर दो। माता पिता का सेवा हम लोग किस लिए करेंगे, उन्होंने तो अपना भोग किया, बीच समय पैदा हो गया, उसमें उनका क्या, हमारा उनके किस लिए हम लोग हैं रहे। आजकल ऐसी सब रीतियां चली आ रही हैं, ये सब धर्म नहीं। इसलिए आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता, आत्मा कभी मरती नहीं है ना कभी जन्मती है, इस चीज को पहले समझा जाए। सनातन माने क्या, आज धर्म के नाम पर सब गड़बड़ चलता है। कोई कहता है, आजकल दिल्ली के मैदानों में जब कभी चलने के लिए गया तो देखा जैसे 10 आदमी 50 आदमी 100 आदमी व्यायाम कर रहे हैं, कोई लेट करके ऐसे कर रहे हैं, कोई ऐसे कर रहे हैं, कोई पैर उठा रहे हैं, चीन में गया तो ऐसे ऐसे करते हैं, खड़े होकर व्यायाम करते हैं, एक आदमी सिखलाता है, और 100, 400, 500, 1000 आदमी जैसा वो कहते हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे 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 करते, कभी ऐसे ऐसे करते हैं, तरह तरह के योग हैं। क्या होगा शरीर के कसरत से आत्मा का क्या होगा, जितना भी करो वो तो मरोगे ही। आजकल एक बाई जैसा संसार में बाई जैसी फैली हुई है योग, अरे जो कहते हैं किसको, एक चीज रहे उससे दूसरी चीज मिले तब तो योग होगा, एक और एक कितना होता है, दो, एक और एक मिलकर के जीरो होता है क्या, अच्छा एक और जीरो मिलकर के कितना होगा,
एक होता है,
समझो इस चीज को। यहां पर कोई वस्तु है, वस्तु के साथ में किसी चीज का योग होता है ने? एक भेड़ थी, दूसरी भेड़ मिला दिया तो ये दो भेड़ हो गई, एक क्लास में 50 बच्चे थे उसमें एक बच्चा और गया तो कितना हो गया, 51 हो गया। उसी प्रकार से वस्तु दो है, एक है जगत का सृजन करने वाला, विश्व ब्रह्मांड का बनाने वाला गॉड है। गॉड इसलिए कहते हैं कि जरा लोग समझेंगे, गॉड मैंने क्या, जी जनरेटर, विश्व का सृजन करने वाला, ओ ऑपरेटर संचालक, हवा का संचालन, समुद्र का संचालन, वायु का संचालन, हमारे कर्मों का संचालन, जो कुछ होता है कौन कर रहा है। हम तो चाहते हैं सुख, किंतु दुख किस लिए आता है, हम तो चाहते हैं कि बूढ़ा बूढ़ी ना होए। यदि किसी लड़की या किसी युवक के अभी एक केस पक जाए ना तो दर्पण में दे करके ऐसे निकाले, तो जब बेकार जाना निकाल देना तो 2 निकलेगा 4 निकलेगा 5वें दिन देखा जैसे आधा हो गया तो क्या करेंगे, ये तो होना ही है। इसलिए क्या बतला रहा, ओ मैंने ऑपरेटर, संसार विश्व का जो संचालन हो रहा है, समुद्र में जो द्वार फाटा होती है, संसार में हम जो सुखी दुखी ये सब हो रहे हैं, कर्मों के अनुसार में वही सबका फल भोग देने वाला है। इस प्रकार ओ और डी माने रिक्वायर, सबको सृष्टि स्थिति और प्रलय का जो मालिक है वो कौन है,
वो प्रभु हैं,
ईश्वर हैं, सबके नियंता, उन समस्त ईश्वरों के करोड़ों करोड़ों ईश्वर हैं। शंकर जी भी एक ईश्वर हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु हैं और बहुत से ईश्वर हैं। समस्त ईश्वरों के भी मूल ईश्वर कौन है? ये वृंदावन में बंसी बजाने वाला ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, इसको ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने, सब लोगों ने, दुर्गा जी ने, सब ने मिलित होकर के ये निश्चय किया। छोटा सा देखने में समस्त ईश्वरों को भी संचालन करने वाला ईश्वर परमा कृष्ण अनादिराज गोविंद सबका देखने में ऐसा लगता है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं ये जो जीव हैं हमारे अंश हैं। ममई वंशो जीवलोके जीव भूता सनातन, जैसे मैं सनातन हूँ, हमारा यंश जितने भी प्राणी हैं विश्व में, पेड़ पौधे घास पतंग से लेकर के सभी, ये चेतन है। छुई मुई घास एक होती है, छुई मुई क्या होता है, यदि छूते हैं तो क्या हो जाती है, लज्जित होकर के, और थोड़ी देर के बाद में क्यों, उसके अंदर में सेंस है कि नहीं, एक चीटी के अंदर में प्राण है कि नहीं, वो हमारे जैसा ही है, किंतु अपने कर्मों के फल से वो ऐसा ही बना हुआ है। पेड़ भी वैसे ही है, मनुष्य भी वैसे हैं। ये सब होता है भगवान के भूलने से, जो मूल जगत का क्रिएटर है, जिससे समस्त जगत निकला है। जतो मान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति अविषम विषन्ति तद्विज्ञात, वही प्र अभी भी हम वृद्ध हो गए, कोई भी कुछ हमको सहारा नहीं है। अभी एक दिन में आज ही भगवान का सहारा लीजिए, प्रभु आप मेरे हैं, सबर पर देखेंगे आज ही सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आप सुखी हो जाएंगे। जिस प्रकार से अर्जुन ने अपनी बागडोर कृष्ण के हाथ में हुआ, क्या अर्जुन ने सब तत्व बदलाए, अर्जुन को कृष्ण ने सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। जितने जगत में धर्म के नाम से अभी प्रचलित हो रहे हैं, जो मन के और शरीर के धर्म हैं, मन और शरीर का धर्म क्या, अभी यदि हम हवा न लें तो अभी क्या होगा, मर जाएंगे। पानी नहीं पिए तो दो घंटे, चार घंटे, पाँच घंटे, दस घंटे, एक दिन, दो दिन, तीन दिन तक बस, बिना हवा के एक सेकंड भी नहीं रह सकते। सूर्य की रोशनी के बिना भी हम नहीं जीवित रहते, किंतु इसमें कुछ समय लग सकता है। किंतु इसके अंदर में जो आत्मा है, यदि इसी समय छोड़ देगी, इसी समय में शरीर का कोई भी कुछ काम नहीं। ये इतना बड़ा शरीर को जिसको हमने बड़ा किया, पाला पोसा, आत्मा निकल जाने के बाद में क्या होता है, कीड़े हो जाते हैं, घर में नहीं रखते, उसे परवाह करते हैं, और नहीं तो घर में भूत पैदा हो जाएगा। इसलिए घर को साफ करके 12 दिन में, 13 दिन में बाद में शुद्ध करना होता है इसी शरीर के लिए। इसलिए यह शरीर मैं नहीं हूं, पहली बात, हम भगवान के अंश हैं। भगवान को भूलने की वजह से हमारी ये दुर्गति हो रही है, जीवन और मरण के चक्कर में चल रहे हैं। इसलिए हमने पहले बात लाया कर्मणीय आरोहणाना, जितने हम सब कुछ कर्म कर रहे हैं सब इसलिए कि सुखी हों, किंतु सुखी नहीं होते। क्यों? भगवान के चरणों में अपनी बागडोर नहीं देते। अभी भी भगवान के चरणों में हम समर्पण कर दिए आत्मा का, किंतु होगा नहीं, कैसे होगा? उन लोगों ने बतलाया दिन गुरु भव निधि तरे न कोई ज्यो बिरिंच शंकर सम हो। ब्रह्मा और शंकर के समान ज्ञानी भी हो जाए और गुरु नहीं करे, उसके पथ मार्ग पर न चले, नहीं, गुरु चाहिए कृष्ण जैसा, नारद जी जैसा, सब होगा। जैसे तैसे लोगों के जो शरीर के रोग को दूर करने वाले या शरीर की कामनाओं को करने वाले पूर्ण, इन गुरुओं से नहीं होगा। जो आत्मा तत्व की उपलब्धि करने वाला हो, कृष्ण की उपलब्धि करने वाला हो, जो सबसे प्रीति रखता हो, कृष्ण के चरणों में प्रेम हो, उसकी उपलब्धि करने वाला हो, भजन परायण हो, जैसे उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम करने से भी देखिए किंतु गुरु थे नारद, इसलिए हुआ। आज तुम सीधा भी करते हैं तो कहाँ होता है। इसलिए गुरु यदि ठीक नहीं रहेगा हमको तत्व ज्ञान नहीं दे सकेगा। इसलिए समय हो गया है, संक्षेप में यही है, सब कुछ करो, संसार में रहिए, किंतु ये याद रखिए, भूलिए मत, मैं भगवान का, हमारे वो प्रभु हैं, उनके चरणों में शरणागत होकर के थोड़ा से उनके लिए प्रार्थना करें, भगवान का नाम करें। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में केवल एक नाम। यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं, आप 10 दिन शुद्ध रूप से भगवान से प्रार्थना करने के लिए हरि नाम कीजिए, देखिए आपका चित्त बदल जाएगा। इसलिए अपनी आत्मा से, अपने तन मन वचन से भगवान को समर्पण करके भगवान का नाम करना, ये कलयुग में सबसे प्रधान बात है। और किसी धर्म के चक्कर में नहीं पड़ना है। भगवान से कुछ मांगिए मत, वो सभी कुछ जानने वाले। जैसे पुत्र को माता और पिता से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, उनका सर्वस्व तो बेटे के लिए है। यदि कुछ नहीं मांगेगा भी तो मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी वही उसको अपने आप मिल जाएगा, कानून के जरिए मिल जाएगा। इसलिए बेटे को मांगने की क्या जरूरत है। इसलिए प्रभु से कुछ मांगो मत, मांगो उनके चरणों में प्रेम हो जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, जैसे अर्जुन ने किया। अर्जुन ने कृष्ण की बात मानी, युद्ध किया, युद्ध में उनकी विजय हुई, और कौरवों का क्या हुआ, सर्वनाश, उनके सारी सेनाएं मारी गई। धृतराष्ट्र भी अपने जीवित रहते हुए देखा कि हमारे वंश में कोई अब एक प्रदीप देने वाला नहीं रहा, पांडव ही बचे रह गए। फिर विदुर ने उनको कुछ तत्व ज्ञान दे करके और उनको हरिद्वार में ले जा करके और वहां पर ज्ञान दे करके भगवान के भजन में लगाया, फिर उसको भी शांति मिली। ऐसे ही ये महासमर में आप लोग जूझ रहे हैं, सभी स्त्री पुरुष सभी सभी सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं। यदि पैसे से शांति आज मिलती होती तो अमेरिका खरीद लेता कि नहीं। अमेरिका में सबसे अधिक आत्महत्याएं होती हैं, वहां के लोग शराब पीते हैं, गुंडागिरी करते हैं, चलते यहां साथ ही साथ बंदूक मार देंगे। बल्कि भारतवर्ष में उतना ये सब नहीं है जितना विदेशों में है। यदि रुपए से मिलता है तो रशिया इसको खरीद लेती शांति को, किंतु एक यही चीज है ये भारतवर्ष में प्रदान है, भारत के अतिरिक्त शांति नहीं मिलती। ये मिलेगा भगवान के अनकंडीशनल सरेंडर से, जो जहां है जिस रूप में है, बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं, गरीब हैं, धनी हैं, इसमें पैसे की और शरीर के एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, बस इतना कहने की जरूरत। एक बार यदि हृदय से निकल गया, भगवान से ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए मरने के पहले ही इस चीज को ठीक कर लेना चाहिए। कुछ भगवान का नाम बिना पैसे का, जिसमें समय का भी कोई बात नहीं है, चलते फिरते उठते बैठते, खाने के पहले खाने के बाद, स्नान के बाद स्नान से पहले, रात में बिस्तर पर बैठ करके हरे कृष्ण कर सकते। मरते समय में टट्टी निकल रही है, टट्टी के लिए जा रहे हैं, उस समय भी भगवान का नाम ले सकते हैं, उसमें ध्यान की भी जरूरत नहीं। ध्यान जो योग इत्यादि से होता है, इसकी भी जरूरत नहीं ध्यान की। भगवान का नाम करने से अपने आप उसके हृदय में आ जाते हैं। अजामिल का ये उपाख्यान निकला। इसलिए आप जो जैसे जहाँ हैं, जरा शराब मत पिए। यदि जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, शराब मत पिएंगे। मांस मछली मदिरा इत्यादि का व्यवहार, प्याज लहसुन मत खाएंगे, इसमें 21 प्रकार के विष हैं। अभी अमेरिका में अनुसंधान हुआ, सिगरेट तो भूल करके मत पीजिए। यदि चाहते हैं सुख, घर से चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, माता पिता का आदर करना सीखो, बहुएं अपने सास ससुर का आदर करना सीखें, और सास अपने बहुओं को अपनी बेटी समझ करके उनको प्यार करना सीखे, पिता भी पुत्र के प्रति ऐसा हो और बेटा भी उनके प्रति ऐसा हो। आज सब चीज के कोई आज की समस्या का मूल कारण है प्रीति नहीं है परस्पर। आज प्रीति होती, आज स्त्री में और पति में कोई प्रेम नहीं है पहले जैसा, विशेष करके पाश्चात्य देशों में स्त्रियां रोज क्या बदलती रहती हैं, वो दिन ही क्या जिससे एक स्त्री ना बदल दी गई, एक पति नहीं बदल रह गया। आज भारतवर्ष में उसकी हवा न आने पाए, भारत की संस्कृति को आप लोग लेकर के चलेंगे, इसलिए उधर में कोई सुखी नहीं। इसलिए अपने संस्कृति में रह करके माता पिता का आदर करना सीखें, तब तो भगवान को प्यार कर सकेंगे, नहीं तो क्या कर सकेंगे। समाज में प्रीति के साथ में रहना सीखिए, नहीं तो वहाँ पर क्या कर सकेंगे। इसलिए प्रेम ही हमारा धर्म है। यही प्रेम यदि भगवान के चरणों में समर्पित होकर के शुद्ध हो जाए, अपने आप सब लोगों से शांति का व्यवहार, प्रीति का व्यवहार होने लग जाएगा। इसलिए ये प्रेम हमारा धर्म है, यह प्रेम भगवान के नाम से उत्पन्न होगा और हम लोग जीवन में सुखी रह सकते हैं। यही हमारा सनातन धर्म है। संक्षेप में गौ प्रेमानंद।